कवे गौरचंद्राय राधिकायै कदाचिदभक्ताय सर्वभक्ताय नमः यं प्राप्यजन्तमनुपेतमपेतसुखं पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भक्ति किसको कहते हैं? जिसमें कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण माने यहाँ कृष्ण और कृष्ण के परिकर साधक भक्त सभी लोगों को समझे, तो कृष्ण उनके भक्त उनके परिकर सभी लोगों को समझना चाहिए। उनकी सेवा के अतिरिक्त अपने सुख की कामना न रहे, गंध भी न रहे। जितनी ये गंध नहीं रहेगी उतना ही वो शुद्ध भक्त होगा। तनिक भी अपने भोग की लालसा अपने सुख के लिए तनिक भी कुछ न रहे। और ज्ञान कर्म आदि से अनावृत समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की प्रीति के लिए तन मचन वचन मन और वचन के द्वारा उनकी सब समय सेवा। तैल धारावत अविच्छिन्न गति से साधकों के लिए विशेष करके जब तक ये रति न उत्पन्न हो जाए ये बड़ी कठिन समस्या है। हजार हम लोग चेष्टा करेंगे उसको धीरे 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 होगा किंतु पूर्ण रूप से नहीं होगा। इसीलिए वो साधक है, मध्यम अधिकारी तक भी साधक है, उत्तम अधिकारी में भी देखा जाता है कि पहली स्थिति में वो साधक ही है। भावावस्था आने पर भी, स्वरूप सिद्ध होने पर भी, वस्तु सिद्धि नहीं होने तक वो साधक है। ये समय ये तनिक भी नहीं रहेगा उस समय में वो सिद्ध हो जाए। विशेष करके साधक में अपने तन मन वचन से प्रभु की सेवा न हो न कर सके तो उसे खेद होता है, उसे दुख होता है, उसे सब समय सेवा चाहिए। तन से चाहिए, मन से चाहिए, वचन से सेवा उसको नहीं मिलेगी तो दुखी हो जाए। पहले तो उसको मिलनी चाहिए पहली स्थिति में, और जब स्थिति आ जाएगी हरि गुरु वैष्णव का मन समझकर उनके प्रति के लिए अपने आप करने लग जाएगा वो दूसरी स्थिति। उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा सेवा, वो अपने मन से उद्भावना कर लेगा और दूसरों को भी सेवा में लगाएगा अपने भी। तो पहली स्थिति में उसको यदि हरि कथा न बोले तो उसको खेद होगा। यदि कोई शारीरिक परिश्रम है उसे न करने दिया जाए तो उसे बहुत ही खेद होगा। मन के द्वारा उसमें कुछ बाधा पड़ जाए तो उसके लिए उसे खेद होगा। ये जो निष्कपट वैष्णव है, सेवक हैं, साधक हैं, उनके लिए, और जो निष्कपट नहीं है वो उनको सेवा मिलने पर भी नहीं करेंगे और इच्छा रहती है कि वो हम ना करें तो अच्छा है, बच गए हम। किंतु सच्चा साधक जो प्रथम अवस्था में होगा, अंततः थोड़ी सी निष्ठा आने लग गई है पहले, तो उसको कोई काम करने से मना करेगा, सेवा का कार्य, तो उसे कष्ट होगा। तो उसको यदि हरि कथा न बोलने दिया जाए किसी से, तो उसको भी बड़ा खेद होता है। तो ऐसे आदमी भी बहुत, साधक भी कम है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो उनको सेवा कार्य न दिया जाए तो कहेंगे भगवान की बड़ी कृपा है जो हमको, और जो आदेश देना है उसके निकट भी नहीं जाएंगे, उनके लिए तो बड़ा चाहिए। किंतु दूसरा जो है, जिनको अब रुचि हो गई है हरि कथा, जैसे हमारे हम लोगों के समय पर्यटक था, उसको कोई हरि कथा बोलने के लिए नहीं बोला जाए तो बड़ा उसको दुख होता। हमारा शुभानंद जी भी ऐसे, इनको हरि कथा नहीं बोलने दिया जाए मन खराब हो जाए। अभी भी सेवा काम में यदि उनको हम कहे भैया, उन दूसरों को करते हैं, मन खराब हो जाए। हमारे सुबल सखा जी ब्रह्मचारी हैं, इनको कहा जाए जैसे मत अभी न बोले कि नहीं बुलाया जाए तो मन खराब कर देंगे। और लोगों का नहीं, बड़े उत्साह से रहेंगे, मार दूर रहेंगे महाराज जी हमको ना बोले। किंतु अब जैसे हमारे पुंडरिक जी हैं, अभी बहुत भागते हैं दूर, और हम सब लोग पीछे बैठते हैं जैसे महाराज जी के, महाराज बुलाने और खड़े न कर दें। तो ये समझना अब रुचि हो गई है इस सब। तो अभी वो जो प्रसंग चल रहा था उसका समापन सुबल सखा ब्रह्मचारी जी करें, और इसके बाद में हम बहुत सुंदर सुंदर बातें बतलाएंगे, और समापन करो पहले। आज तुम्हारे मुख से समापन होगा। बलदेव जी का चरित्र में जो कुछ इन लोगों ने रख दिया है बाकी रह गया है, सिंहावलोकन जानता है? सिंहावलोकन, सिंहावलोकन किसको कहते हैं? सिंहावलोकन, सिंह अपने इधर से चारों तरफ नजर घुमा करके अपना शिकार देख लेगा, और एकदम एक सेकंड में प्लान बना लेगा, और प्लान बना करके उसके पीछे दौड़ कर उसको पकड़ लेगा। सिंहावलोकन करें, बोलिए।
बृहद भगवतामृत से सनातन गोस्वामी के द्वारा संग्रहित और बहुत ही उत्तम चीज है, उसको साधारण लोगों के सामने पाठ करना उचित। बोलो, पढ़ो, भजन करो, उसके संबंध में साधारण लोगों के लिए वो सब चीज़ें हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक,
ठीक। हम लोग बृहद भगवतामृत से सनातन गोस्वामी एकत्रित किए हुए रसायन नामक श्लोकों को पाठ का हम लोग कर रहे थे। उन्होंने विशेष करके वेणुगीत के सभी श्लोकों को दिया। यद्यपि गोपियों के पूर्वराग का यह विषय है, तो भी ये पूर्वराग ठीक नहीं, वो सब समय उनको पूर्वराग बना रहता है। लाभ मिलने पर भी उनको ऐसा ही पूर्वराग बना रहेगा। साधक लोग जो लोभ युक्त हैं हरि कथा में और कृष्ण की ऐसी सेवा में वो प्राप्त करना चाहते हैं जैसे कि ब्रजवासी लोगों की थी, तो उन लोगों को ये सब सहारा है उसमें प्रवेश कराने के लिए। यद्यपि ये नित्य सिद्धा क्या राधिका जी और उनके काय व्यूह का विषय है, दूसरों के लिए ऐसा संभव पर नहीं है। साधक यहाँ तक कि साधन के द्वारा सिद्धि भी लाभ करने पर रुपये में जैसे ये पूर्वराग इत्यादि की बातें बतलाई गई है, ये होना बड़ा भारी कठिन है। तभी श्रील व्यास जी ने समाधि में देखा और उसका वर्णन किया अपनी समाधि भाषा में। है तो परम पवित्र शुद्ध, तो लोगों के अधिकार के अनुसार में वो कुछ माया का मल भाव उसमें आ सकता है। भजन करते करते इन माया के मलों को, भाषा के मलों को दूर करके इसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए, जैसा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया। शुद्ध रूप से सुनते सुनते श्रवण करते 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 वो चीजें कुछ कुछ हमारे हृदय में आएंगी। इसलिए ये सब श्रवण की जरूरत है। हम उसकी ठीक धारणा नहीं ले सकेंगे तो भी कुछ काम होगा। इसलिए व्यास जी ने समाधि भाषा वाली चीज वर्णन किया और सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी की सभा में इसका गान किया। बहुत से लोग सुने होंगे किंतु सबने समझ लिया और अनुसरण किया ये संभव पर नहीं। क्वचित किसी ने इस ऐसे दुर्लभ रत्न को समझा और उसको ग्रहण किया हो। श्रुतियों ने इसको श्रवण किया और श्रवण करके उनको लोभ हुआ। दंडकारण्यवासी कभी सुने होंगे इस विषय को और उनको लोभ जगा। इतने जन्म जन्मांतर तक तो वो करते रहे साधन भजन, तब कहीं इसमें प्रवेश मिला। इसलिए ये बहुत ऊंची चीज है, समझाने पर भी ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो भी कहा जाता है कि एक आदमी बीमार पड़ गया, ऐसा बीमार पड़ा कि हजम न कुछ हो, पानी भी हजम न हो, बहुत एकदम पतली दस्त होती थी और एकदम सूख करके मरने मरने हो गए। तो किसी नामी वैद्य के पास में हमारे गुरु जी ले गए नरहरि प्रभु जी को। वो इनकी चिकित्सा करने का कहा कि शुद्ध घी गाय का चाहिए, इनको खिलाया जाए। उनका ये तो ऐसे ही मर रहे, घी खा करके तो और मरेंगे। अच्छा तो हम चिकित्सा कर रहे हैं ना, घी जाएगा गिर जाएगा सब ठीक है, किंतु कुछ तो लगा रह जाएगा उसी से क्या। और धीरे धीरे ऐसे ढंग से उन्होंने चिकित्सा की, कुछ दिनों के बाद में वो स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हो गए तो डॉक्टर ने कहा, वैद्य जी थे, भाई अब तो आप ठीक हो गए, अब जा सकते हैं, किंतु मैंने अपने जीवन में आज ही जो चिकित्सा की, हमारी चिकित्सा सफल हुई और उनसे हरि कथा कुछ सुनने लगा हमारे गुरु जी से अंतिम विदाई। वो इनसे बातचीत करते 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 सुनते सुनते बस शरीर उसका छूट गया। यही हमारा परमार्थ का काम है, हमने जो कुछ किया अपने जीवन में बस ये वैष्णव सेवा करके हमारा जीवन सफल हो गया, अब हमको वैद्यगिरी और ये सब नहीं करना है। तो ऐसे सफल वो वैद्य थे। ऐसे ही ये साधारण लोगों के लिए तो बोधगम में नहीं है, जो अंततः जिनमें रुचि उत्पन्न है, जात रुचि व्यक्ति जो हैं, जिनको कुछ लोभ हो गया है, इसको सुन करके उनका कुछ उपकार, दूसरों लोगों को नहीं। इसलिए व्यास जी ने ये सब लिखे, सुखदेव गोस्वामी ने भरी हुई सभा में इसका वर्णन किया, तो जो उसको ग्रहण कर सके ग्रहण किया और जो नहीं ग्रहण कर सके, जितना ग्रहण कर सके उतना ही। इसमें पहला बतलाया है इसको समझने के लिए। ये प्रेम जो होता है, ये प्रेम की बातें हैं इनकी, बतला रहे हैं कि ये जो प्रेम है ये साधारणी समंजसा और समर्था तीन प्रकार का होता है। साधारणी प्रेम किसको कहते हैं? बृहद भगवतामृत में इस सबका बहुत सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। साधारणी जो प्रेम होता है, साधारणी रति कहो, साधारणी जो रति होती है, कुब्जा का वर्णन किस लिए किया गया? क्यों? वो वेश्या नहीं थी, किसी से उसका संबंध नहीं था, कृष्ण के प्रति ही एकांतिक रूप में वो रति थी और किसी के प्रति नहीं, इसलिए भगवान ने उसको कुब्जा बना रखा था अपने मिलन से पहले। तो उसकी रति जो कृष्ण को देख करके हुई, देख करके ही हुई, और कृष्ण चले गए तो सब समाप्त हो गया। ये साधारण रति है, जो रति गाढ़ कभी नहीं होती, प्रगाढ़ नहीं होती, और कृष्ण के दर्शन के द्वारा ही जो उत्पन्न होती है, और संभोग इच्छा ही, कृष्ण से मिलन की इच्छा ही बस अपने सुख के लिए, और वही इसका निदान है। निदान माने जहां कृष्ण को दर्शन किया है, कृष्ण का स्पर्श हुआ, बस खत्म हो गया। उनके संभोग इच्छा में आत्मेंद्रिय प्रीति की वांछा है, अपने सुख भोग की लालसा है। कृष्ण को पकड़ लिया है, जब कृष्ण ने उसे सुंदर बना दिया तो कृष्ण का अंचल पकड़ लिया, जी हमारे फोन में पड़ा है। कृष्ण ने उसे कहा आप पधारो, मैं जिस काम के लिए आया काम करके तब पीछे आऊंगा, और पीछे गए भी किस लिए? साधारणी प्रेम को कुछ उन्नत करने के लिए इसलिए गए। और कृष्ण वांछा कल्पतरु है, कोई भी हो, यहाँ तक कि असुर भी कोई कामना करके उनकी उपासना करता है तो उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो कुब्जा की इच्छा को क्यों न पूर्ण करें? इसलिए कंस को मारने के बाद में फिर उद्धव जी को लेकर के उसके घर में पधारे थे। पधारे थे मैंने उस लालसा के लिए नहीं, उस समय उसका चित्त शुद्ध हो गया, किंतु शुद्ध होने पर भी कुछ बढ़ा नहीं। कृष्ण जब चले आए उसके घर से, इसके बाद में उसका कोई जिक्र नहीं मिलता जी क्या हुआ पीछे, कृष्ण के लिए विरह ताप हुआ कि नहीं, और सेवा की आकांक्षा किया कि नहीं, फिर कृष्ण से मिलने की कोई तीव्र लालसा हुई कि नहीं, और कृष्ण सुखी हो, इसका कोई भी संवाद भागवत नहीं मिली, इसलिए इसको साधारणी रति का। किंतु लिया क्यों? इसलिए कि कृष्ण के को छोड़ करके और किसी के प्रति उसका भाव, इसलिए उसको ग्रहण कर, भले ही संभोग की इच्छा जैसे भी अपने सुख की लालसा है, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त नहीं, इसलिए कृष्ण में निष्ठा है, इसलिए इस चीज को ग्रहण कर लिया। समर्थारति को समझिए तब फिर हम समंजसा के संबंध में कहें। गोपियों का जो प्रेम है, रति है, ये समर्था रति। समर्था माने समर्थ है, किस चीज में समर्थ है? आर्य धर्म, धैर्य, लज्जा, गृह कार्य, गुरुजन, सबको छोड़ने में समर्थ है। जिसको ये रति हो जाती है वो क्या करता है? आर्य धर्म, धैर्य। धैर्य मैंने क्या? कृष्ण से मिलना नहीं चाहिए, हमारी शादी दूसरी है, इसे लोक लज्जा और धैर्य, सबको यह रति ऐसी प्रबल होती है कि उसे छुड़ा देती है, गुरुजनों का भय इत्यादि छुड़ाने में समर्थ है ये, और कृष्ण को वशीभूत करने में भी ये समर्थ, कृष्ण को वशीभूत कर रही है। स्वाभाविक रूप से
कृष्ण के सुख तात्पर्यमय है, कृष्ण को सुख हो, इसके अतिरिक्त अपने सुख की कोई भी लालसा। कृष्ण सुख तात्पर्य है, नागनी अपनी दुख सब बांची तारी सुख, मोरे जदि दिले दुख तार हईल महासुख, से ही दुख मोर सुख बन। यदि कृष्ण चाहे वह असली सेवा पाद रहता है, चाहे कृष्ण हमें विरह से हमें कुचल दें, हमें छोड़ दें, हमारे सामने दूसरों प्रियाओं के साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो भी हमारे प्राणनाथ है, ये ऐसी भावना नहीं। कृष्ण सुख तात्पर्य नहीं है और अत्यंत गाढ़ी है, पतली नहीं, निरपेक्ष क्रियामान, निरपेक्ष स्वयं रूप में सेवा तात्पर्यमय है। पृथक रूप से संभोग की कोई लालसा नहीं, अतः स्वाभाविक रूप से कृष्ण रूप गुण लीला माधुर्य को सम्यक रूप में आस्वादन करने वाली है, ये कुब्जा के लिए अथवा उन लोगों के लिए संभव नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि इतनी बसी भूत करके कृष्ण उनको राधे राधे उनको पकड़कर रुक्मणी को या सत्यभामा को क्यों कहते हैं, ये लोग भी नहीं समझ पाते, इसलिए उनके अंदर में ऐसी प्रगाढ़ रति है जिसके द्वारा कृष्ण रूप गुण लीला माधुर्य को समग्र रूप में आस्वादन परायण होती है और कृष्ण को मोहने में भी समर्थ होती हैं, इतनी उनकी रति चमत्कार पूर्ण नित्य नवीन होती है, इसलिए वो समर्थ है। ये सब छोड़ने में और साथ साथ में कृष्ण को वशीभूत करने में इनकी रति समर्थ है, इसलिए ये समर्था रति है। और कृष्ण का राजकुमारियों के साथ में सत्यभामा रुक्मणी इत्यादि के साथ में विवाह, उन राजकुमारियों के प्राण रक्षा के लिए यदि रुक्मणी के साथ ये नहीं उसको ले आते तो उसी दिन वो प्राण योग उनका हो जाता, वो मर जाते। सत्यभामा का भी ऐसे है, उनकी आठ जो पटरानियां हैं राजकुमारियों के साथ में जो शादी की और नरकासुर के घर में जो थी राजकुमारियां अथवा विवाहिता, वो लोग भी मरने के लिए तैयार है, कृष्ण को बड़े दयालु हैं, इसलिए उनकी प्राण रक्षा के लिए और दुष्ट राजाओं का दर्प विनाश करने के लिए सबके सामने रुक्मी जरासंध दुर्योधन कर्ण इत्यादि सब थे, सबका मान मर्दन कर और रुक्मिणी को ले आए। कृष्ण एक बार कहा भी था, हम तुम्हारे रूप पर रुद्ध होकर के तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए तुमको लाने के लिए मैं नहीं गया, मैं किस लिए गया, ऐसे ऐसे दुष्ट राजाओं का अभिमान दर्प चूर्ण करने के लिए मैं गया, इसलिए आप अब कहीं भी जा सकती हैं, किसी के साथ नहीं रह सकती हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको उन राजाओं के पास में जिससे शादी आप करना चाहते हैं मैं खुद पहुंचाऊंगा। और ये सुनते ही रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गई, तो अपना ब्रज का जो विरह है वो कैसे बिताएंगे, उनकी कुछ कुछ विषयों में ब्रजकुमारियों के जैसा कुछ कुछ तुलना मूलक कुछ भाव है, समानता है, कुछ कुछ रूप में गुण में कुछ क्रिया है, इसलिए उनके साथ में शादी की, दुष्ट राजाओं का दर्प और उनकी प्राण रक्षा, और तीसरा ब्रज का विरह में कैसे कटाऊं, कैसे भूलूं, इसलिए वो भूलने के लिए उनके साथ में शादी। किंतु जैसे गोपियों के साथ में स्वाभाविक रूप से उनके वशीभूत होकर के ब्रज में वास करके उनके साथ में व्यवहार है, इनके साथ में वो नहीं, क्योंकि इनका अनुराग रति इतनी गाढ़ी नहीं है उनसे। किंतु उससे हुआ क्या, कृष्ण का विरह ताप और बढ़ गया। जैसे गोपियों का कृष्ण को भूलने के लिए करती हैं कुछ और उसे उनका और विरह ताप बढ़ गया। उद्धव जी आए गोपियों को सांत्वना देने के लिए और उनको कहने लगे, ज्ञान का उपदेश करने लगे, और इससे हुआ क्या, उनका विरह ताप इतना बढ़ गया जो जीवित रहने की आशा भी जो जीव कोश है वो भी समाप्त हो गया और विरह में अत्यंत कांपा, जीवित भी नहीं रह। इसलिए बलदेव जी को उन्होंने कृष्ण ने भेजा, कृष्ण आ क्यों नहीं रहेंगे, विरह ताप और बढ़ जाएगा, उद्धव को भेजने से ये दशा हुई और मैं जाऊंगा तो उनकी दशा न जाने क्या हो जाए, इसलिए उनका विरह ताप बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं आ रहे। इस चीज को समझना बड़ा भारी कठिन है, ये समझना ये गोपियों को कृष्ण के दर्शन से विरह ताप बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा समझ करके कृष्ण वहां से चले आए थे, इसलिए वो जा भी नहीं सकते। इसलिए बड़ा भारी ये विरह क्या चीज है ये समझना बहुत कठिन है। इन लोगों का क्या है, इन लोगों का समंजसा में कृष्ण रूप गुण महिमा श्रवण से ये उद्बुद्ध होता है। कृष्ण के प्रति जो रति है ये और बढ़ती है कैसे, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इत्यादि के श्रवण से, और गोपियों का स्वाभाविक रूप से जब से जन्मी है जब से हैं तभी से ये है, उनका ऐसा नहीं है, कृष्ण हेतु नहीं है, इनका हेतु है क्या, नारद जी से सुना कहीं और दूसरी जगह से सुना रुक्मिणी ने सत्यभामा ने तब कृष्ण के प्रति उनकी रति हुई ऐसा देखा जाता है हेतु, ये सब। किंतु गोपियों के लिए ऐसा नहीं कहीं सुना जाता, श्रीमद् भागवत में ये नहीं बतला जी यहाँ से प्रेम उनका प्रारंभ हुआ स्वाभाविक रूप में, क्यों, उनकी लादनी शक्ति और उनकी काय भी हुआ है लादनी शक्ति, इसलिए स्वाभाविक रूप में जब से है तभी से उनकी रति वो क्या है समर्था है। इनकी सुना उनकी महिमा ये उद्भुत हुई प्रेम, इसके बाद में स्वसुख भोग वासना इनमें कुछ है, बेटा हमको उत्पन्न हो बेटी उत्पन्न हो संतान उत्पन्न ये भी इच्छा है, किंतु कृष्ण सुख में ये बदल जाती है पीछे, है वासना किंतु वासना इनकी ऐसी है इनमें ऐसा है कि अपने ये संभोग इत्यादि की लालसा को कृष्ण सुख में, और उनका क्या है, उनका ऐसा नहीं, उनका स्वभाव पहले से ही सब कुछ है, कृष्ण सुख तात्पर्य है केवल, कभी कभी संजोग की वासना होने पर भी मिलन की लालसा होने पर भी वो कृष्ण कृष्ण सुख के लिए वो बन जाती है अपने लिए नहीं बनती, इसलिए इसको समंजसा कहा। और गोपियों का इसीलिए ये यहां पर बतला रहे हैं, जितने भी कुछ बतला रहे हैं वो समर्थारति के उदाहरण सब दे करके बतला रहे हैं। इसमें इन्होंने पुलिंग उरुगाय पदाक्षरा श्री कुमकुम में दयिता स्तन मंडिते तत्दर्शन स्मर तृण रूषितेन लिप्यंत आनंद कुचौ जहौष बताए। इसको हमने व्याख्या किया था पहले ना, नहीं किया था, दर्शन गोपियां पहले हिरणियों का सौभाग्य तत्पश्चात विमान में चढ़ करके ब्रज देवियों देवताओं की पत्नियां गायों का सौभाग्य देखा, बछड़ियों का सौभाग्य देखा, जे कृष्ण के बंसीनाद को सुनकर और उनको रूप दर्शन कर मुग्ध हो गए, खाना पीना देह दैक सब कुछ भूल गए। तत्पश्चात वहां के सुख सारी स्क्वायल इत्यादि का वर्णन किया। ये क्या है? मुनि है। प्रायो न अहो बतांग बिहगा, अहो बतांग न, तो ये बन के पक्षी ऐसे साधारण नहीं है। कैसे हैं? मुनि। कौन से मुनि? कौन से मुनि? सुखदेव गोस्वामी जैसे। सुखदेव गोस्वामी जैसे कृष्ण कथा में वाचाल हैं, कृष्ण कथा का वर्णन करने वाले हैं, ऐसे सुखशाली कृष्ण के लीलाओं का गुणगान कर। कोयल कृष्ण की गुण लीलाओं का गायन करके और कृष्ण और गोपियों के प्रेम को बढ़ाती और उद्दीपना कराती है, और मयूर कृष्ण को देखते ही नृत्य करने लगते हैं। तो ये श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीन प्रधान इनमें हैं। स्मरण भी वैसा तन्मय होकर के उनका कर, श्रवण भी कर रहे हैं। कौन? जब मोर नाचने लगते हैं, कोयल कुहकते हैं, तो सभी पक्षी लोग एकदम शांत होकर के सुनने लगते हैं। तत्पश्चात वर्णन किया है, नद्यस तदाउ उपधार्य। और ये कहने से उनके भीतर की जितनी लालसाएं था वो अपने आप व्यक्त हो गई, तो वो लज्जित हो गई इसे छिपाने के लिए। तब फिर वो कहने लगी, क्या है? अहो मैं के लिए मेघ के लिए कह रहे हैं। मेघ बड़े सौभाग्यवान है जो कृष्ण के ऊपर में छाया करके उससे सुंदर सुंदर बूंद बरसाते हैं। और ये कहते हैं फिर अपने मन के भावों को ठीक नहीं रख सकी, तो अंत में अपने आप उनके हृदय से ये निकला, पूर्णा पुलिंद उरुगाय पदाब्ज राग सिंकुं कुमीन दैतास्तन मंडितेन तद दर्शन स्मरण रूषितेन लिप्यंत आनंद कुचौजहां। सनातन गोस्वामी जी इसकी टीका में बतला रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, कौन गोपियां? सनातन गोस्वामी या हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी तो कहते हैं जैसे ये श्रीमती राधिका जी ही कर, ये कह रहे हैं गोपियां। कोई बात नहीं, गोपियों में ही राधा जी श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये कह रहे हैं। पूर्णा पुलिंद कन्या, पुलिंद माने वन जंगल में रहने वाले सबर जाति के और निम्न जाति के पहाड़ी लोग, सबर पुलिंद कोल भील ऐसे जातियों के लड़कियां, ये आयुधन्य, इनका जीवन सार्थक। क्यों कह रही? जब कृष्ण के प्रति अनुराग होता है तो वो समझता है कि हमको कृष्ण के प्रति तनिक भी अनुराग नहीं। जिसको भक्ति जितने ही अधिक होती जाएगी वो समझेगा हमको कृष्ण के चरणों में जैसा भक्ति होना चाहिए नहीं, और उसके लिए खेद करेगा, साधन भजन करके। आज जो साधन भजन नहीं करता, भक्ति से भी संबंध नहीं हुई, गुणा भक्ति करता है अथवा प्रधानी भूता उपाधि युक्त भक्ति को करता है, जिसको आरोप सिद्धा भक्ति का, उनको बड़ा अभिमान होता है कि हमारे जैसा कोई भक्त नहीं। 16,000 नाम करके या 32,000 कहते होंगे जैसे को हमारे समान और कोई नहीं भक्त। हमको एक आदमी कह रहे थे कि मैं गोवर्धन में था और गणपति परिक्रमा रोज लगाता था। हमारे एक बाबा जी हैं, वो एक जगह में 1008 की 108 बार परिक्रमा कर रहे हैं, 6-7 वर्ष हो गया कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा कोई है हमारे जैसा। तो इस साधारण भाव में ऐसा ही होता है। किंतु जब भक्ति होने लगती है वो समझता है कि हम सबसे नीचे गए, हमको भक्ति का लेश भी नहीं, और हाहुताश करता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने अंतिम समय में कह रहे हैं, कितने रो रो करके, गोपीनाथ मम निवेदन विषय दुर्जन सदा का में रहता किछु नहीं मन। भक्ति विनोद ठाकुर जी करें, नरोत्तम ठाकुर जी क्या करें, केनो आज है हमारा प्राण किस लिए है, हमारा जीवन व्यर्थ गया ये विषय में ही। ये किस लिए कहते हैं, अनुभूति के आधार पर कहते हैं, क्योंकि प्रेम जितना होता जाएगा वो समझेगा व्यक्ति जो हमको तनिक भी प्रेम नहीं है। संसार में सबसे ऐसा सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन व्यक्ति है जो ऐसा समझता है जो हमको प्रेम का गंध भी नहीं हुआ, श्रीमती राधिका जी ऐसा समझे, कृष्ण में हमको अनुरागी नहीं हुआ। इसलिए यह उक्ति उनकी है पूर्णापुरंद, किसकी, श्रीमती राधिका जी की, नहीं तो इतना सुंदर कभी कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब इसकी व्याख्या हम दूसरे दिन में करेंगे, आज पतितानां पावनं।